अभिमन्यु के पास देर रात को पृथ्वी का कॉल आया। पृथ्वी नक्ष का पीछा कर रहा था। पूरा दिन नक्ष इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि कोई उसके पीछे है या नहीं। जिस तरह से अभिमन्यु ने उसे अचानक छोड़ दिया था, उसके बाद नक्ष किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। जब नक्ष पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, तब वो देर रात को हॉस्पिटल पहुंचा। नक्ष उसी हॉस्पिटल में गया था जहां इशिका को एक्सीडेंट के बाद लाया गया था। नक्ष के हॉस्पिटल में एंटर करते ही पृथ्वी ने अभिमन्यु को सतर्क करते हुए उसे कॉल कर दिया था। पृथ्वी के कॉल आने के बाद अभिमन्यु के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। वो इस वक्त इशिका के पास अपने कमरे में बैठा हुआ था। इशिका कुछ पुराने एल्बम्स देख रही थी जिसमें वो और अभिमन्यु साथ में थे। क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो, इशिका ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखकर पूछा। अचानक अभिमन्यु के हावभाव बदल गए थे। पहले जब अभिमन्यु इशिका को तस्वीर दिखा रहा था, तब उसका मूड काफी अच्छा था। यहां तक कि वो हर एक फोटो से जुड़ी मेमोरी तक इशिका को बता रहा था। इसी वजह से उन्हें सोने में काफी देर भी हो गई थी। मुझे जाना पड़ेगा। डोंट वरी, तुम यहां बिल्कुल सेफ हो। वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है। अगर फिर भी तुम्हें अजीब लगे तो तुम मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया को यहां बुला सकती हो, अभिमन्यु बोला। ये घर भले ही मेरा हो, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा किसी और के साथ कंफर्ट फील नहीं होता है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, इशिका ने जवाब दिया। नहीं इशिका, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता हूँ। रात काफ़ी हो गई है, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे लिए स्ट्रेस लेना सही भी नहीं है। जो भी चल रहा है उसे मैं खुद संभाल लूंगा, अभिमन्यु ने इशिका को समझाया। अभिमन्यु उठकर जाने को हुआ तभी इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इशिका ने बिना कुछ बोले नामे सिर हिला दिया था। वो नहीं चाहती थी कि अभिमन्यु उसे छोड़कर इस वक्त कहीं भी जाए। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगी तो मैं परेशान हो जाऊंगी, लेकिन यकीन करो तुम्हारे बिना मैं ज्यादा ओवरथिंकिंग करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, इशिका ने उदास चेहरे के साथ कहा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। कुछ पल रुककर उसने जवाब में कहा, ठीक है, फिर मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। सुबह देखता हूँ क्या करना है। जो भी मैटर है वो पृथ्वी हैंडल कर लेगा। अभिमन्यु का जाना जरूरी था, लेकिन वो इशिका को अब किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। फिलहाल के लिए उसने भी जाना कैंसिल कर दिया था। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। उसे अभिमन्यु का साथ चाहिए था, फिर चाहे वो उसके साथ घर पर रुके या फिर उसे अपने साथ लेकर जाए। रात काफी हो गई है, सो जाओ, अभिमन्यु ने हल्का मुस्कुराकर कहा। प्रॉमिस करो कि मेरे सोने के बाद तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, इशिका ने भौहें उठाकर कहा। काफी स्मार्ट हो, डोंट वरी, कहीं नहीं जाऊंगा, चलो सो जाओ, अभिमन्यु ने हल्का हंसकर जवाब दिया। इशिका को आराम से लेटाने के बाद उसने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया था। इशिका के लेटने के बाद अभिमन्यु कमरे में लगे काउच पर सोने के लिए जा रहा था। इशिका को उससे जुड़ा कुछ भी याद नहीं था। ऐसे में अभिमन्यु जल्दबाजी करके उसके करीब आकर उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। अभिमन्यु तकिया उठाने को हुआ तभी इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो धीरे से बोली, बेड पर सो सकते हो। रियली? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। तुम्हें याद नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब तुमने मुझे अपने साथ नहीं सोने दिया, ये बोलकर कि हम इतने भी क्लोज नहीं हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, जब ये हुआ था उसके ठीक 15 मिनट पहले हमारे बीच किस हुआ था। सोचो, एक किस होने के बाद भी तुमने मुझे अपने साथ नहीं सोने दिया था, जबकि अब तो तुम्हें कुछ याद भी नहीं है। पूरी रात काउच पर सोने की वजह से मेरी कमर में दर्द तक हो गया था, पर किसी को मेरी चिंता नहीं थी। याद करो, यही रूम था। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हारे साथ मैंने काफी अत्याचार किए हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा, इशिका ने हल्के तरीके से कहा। अभिमन्यु को अच्छा लग रहा था कि इशिका को भले ही कुछ याद ना हो, लेकिन वो धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु बिना किसी झिझक के इशिका के पास आकर सो गया था। हालांकि अभी भी उनके बीच दूरियां थी। कुछ ही देर में इशिका नींद के आगोश में थी। उसके सोते ही अभिमन्यु ने अपना मोबाइल निकाला और पृथ्वी को मैसेज किया। पता चला वो हॉस्पिटल में किससे मिलने गया है, अभिमन्यु ने पूछा। अभी तक तो नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर से बात करने में ही बिजी है। डोंट वरी, जब पता चल जाएगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप सो सकते हैं, पृथ्वी ने जवाब दिया। ठीक है, ये काम जल्दी से निपटाओ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मुझे तुमसे और जरूरी काम करवाना है, अभिमन्यु बोला। उसने अपना मोबाइल साइड में रख दिया था और फिर इशिका की तरफ देखा। वो सारी चिंताएं भूलकर आराम से सोई हुई थी। वैसे भी आज अभिमान ने उसे सच बताकर उसकी बहुत बड़ी हेल्प की थी, वरना पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था उसके बाद इशिका चैन से सो तक नहीं पाती थी। थैंक यू सो मच अभिमान, आई विश कि मैं भी तुम्हारे काम आ सकता तो तुम्हें ये मजबूरी में आशी से शादी नहीं करनी पड़ती, अभिमान मन ही मन बोला। वो इशिका के करीब नहीं आ सकता था, इसलिए अभिमन्यु ने इशिका का हाथ अपने हाथों में थामा और उसे सीने से लगाकर सो गया था। सिंघानिया मेंशन में अभिमान और आशी की सगाई हो रही थी। अभिमान जिस तरह से 1-1.5 घंटे लेट आया था, उसके बाद वहां मौजूद गेस्ट आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। उन्हें यही लग रहा था कि राजवंश फैमिली काफी बड़ी है और हर कोई जानता था कि आशी सिंघानिया परिवार की गोद ली हुई बेटी है। अभिमान को भले ही इन सबसे कोई फर्क न पड़े, लेकिन आशुतोष और आशि दोनों को ही गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि आशुतोष अपना गुस्सा अभिमान पर निकालने के लिए जाते, काजल ने उनका हाथ पकड़ लिया था। काजल ने विनती भरी निगाहों से आशुतोष की तरफ देखा और नामे सिर हिला दिया था। काजल जबरदस्ती मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोली, आज हमारी बेटी के लिए बहुत खुशी का दिन है। अगर आपने कुछ भी कहा तो लोगों की बातें सही साबित हो जाएंगी। बस अपनी आशी के लिए शांत हूँ, वरना मैं इस इंसान को एक मिनट के लिए भी नहीं झेलने वाला था, आशुतोष ने दांत पीसते हुए दबी आवाज में कहा। अभिमान बिना किसी भाव के आशी की तरफ बढ़ गया था। वो आशी के पास जाकर खड़ा हो गया। आशी दिल पर पत्थर रखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अभिमान के पास आई और उसकी बाह को थाम लिया था। तुम अच्छे से जानते हो अभिमान राजवंश, तुम्हारी जिंदगी और इस शादी पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलता है, फिर देर से आकर क्या साबित करना चाहते हो, आशी गुस्से में बोली। हालांकि इस पूरे समय में उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट बनी हुई थी, ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि उसका और अभिमान का रिश्ता कितना अच्छा है। बस यही कि मेरा एक मिनट भी लेट आना यहाँ सबके सामने तुम्हारी औकात साबित करता है, आशिका सिंघानिया। तुम्हारे होठों की ये जबरदस्ती की मुस्कुराहट और आंखों का गुस्सा बता रहा है कि लोगों ने अच्छे से बता दिया कि तुम्हारी असली हैसियत क्या है। तुम इस घर की बेटी की जगह कभी नहीं ले पाओगी, अभिमान भी मुस्कुराते हुए बोला। उसके चेहरे पर प्लेफुल स्माइल थी। अभिमान ने जो कहा था उसे सुनकर आशी का मन किया कि वो उसका गला दबा दे, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी। आशी और अभिमान को एक साथ मुस्कुराते हुए देखकर वहां बात कर रहे लोगों के मुंह अपने आप बंद हो गए थे। मामले को संभालते हुए आकाश आगे आया और बोला, अरे भाई, हम जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों का भी तो ख्याल करो। कब से तुम दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे, अब बातें बाद में भी कर लेना, वैसे भी पूरी उम्र साथ में ही बितानी है, रिंग एक्सचेंज करने का टाइम आ गया है।
आकाश के इशारे पर आशी की दोस्त मानसी और दूसरी तरफ से रचित अंगूठियां लेकर आगे पहुंचे। पहले आशी ने अभिमान को रिंग पहनाई तो फिर अभिमान ने आशी को। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये सगाई का फंक्शन काफी भीका सा लग रहा था। रिंग एक्सचेंज करने के बाद जब स्पीच और कपल डांस की बारी आई, तब अभिमान ने माइक में कहा, सबसे पहले तो मैं आप सबको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। आई नो मेरे लेट आने से आशी का मूड थोड़ा स्पॉइल हो गया, पर मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल। डॉक्टर ने तो इवन मुझे एडमिट होने के लिए भी कहा था, लेकिन मैं अगर सगाई में नहीं आता तो आशी का दिल टूट जाता। बस यही सोचकर चला आया, मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। बाकी आशी मेरे लिए कितनी मायने रखती है ये वो अच्छे से जानती है। अभिमान की स्पीच के बाद सब तालियां बजाने लगे थे और आपस में बातें करते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे कि बीमार होने के बावजूद वो अपनी कमिटमेंट निभाते हुए सगाई में पहुंचा, ताकि आशी की इंसल्ट ना हो। वहीं उसने जो झूठ बोला था उसे सुनकर रचित ने अभिमान के पास आकर धीरे से कहा, मुझे झूठा कहते हो तुम और मुझसे बड़े झूठे तुम हो। वैसे काफ़ी अच्छा बहाना बनाया है इस बंदरिया के साथ डांस ना करने का। अभिमान ने मुस्कुराकर जवाब में सिर हिला दिया था, तो वहीं आशी गुस्से में उसकी तरफ घूर रही थी। गेस्ट धीरे धीरे आकर उन्हें गिफ्ट दे रहे थे और साथ में कंग्रेचुलेट कर रहे थे। अभिमान को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था वहां खड़े होने में। वो बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द ये फंक्शन खत्म हो जाए और वो यहां से निकल सके। मजबूरी में ही सही, लेकिन उसे वहां रुकना पड़ रहा था। रात के एक बजे के करीब पार्टी खत्म हो गई थी। आशुतोष अभिमान से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन न जाने वो पार्टी से कब गया, आशुतोष को खबर तक नहीं हुई थी। अभिमान सिंघानिया मेंशन से निकल गया। उसने गाड़ी में बैठने से पहले एक नज़र सिंघानिया मेंशन की तरफ देखा तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं। वो लगभग 9 साल का था और आशिका 5 साल की। दोनों एक साथ टेंट हाउस बनाकर खेल रहे थे। आशिका अपने पॉय किचन सेट में से चाय का कप लेकर आई और अभिमान की तरफ बढ़ाकर बोली, इसे जल्दी फिनिश करो, मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन तुम ऑफिस क्यों जाओगी? मैं ऑफिस जाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, और तुम उन पैसों से शॉपिंग करके मजे करना, अभिमान बोला। बिल्कुल नहीं, डैड ने सिखाया है कि अपने पैसों से शॉपिंग करनी है, आशिका ने जवाब दिया। इस बीच यज्ञ वहां पर पहुंचा। उसके पास फुटबॉल थी और वो अभिमान से बोला, तुमने स्कूल में मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे फुटबॉल खेलना सिखाओगे, लेकिन तुम तो यहां पर आकर इसके साथ कुछ और ही कर रहे हो, चलो साथ में खेलते हैं। अभिमान उठने को हुआ तभी आशिका का चेहरा उतर गया था। उसने यज्ञ की तरफ देखकर नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं वही खेलूंगा जिससे आशिका को खुशी मिलेगी। मैंने इससे प्रॉमिस किया है कि हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा। ठीक है, फिर इसी के साथ रहना, मैं सबको बता दूंगा कि स्कूल का कूल बॉय मेरे घर पर आकर घर घर खेलता है, यज्ञ बोला और वहां से चला गया था। उसके जाने या उस मासूम धमकी का भी अभिमान पर कोई असर नहीं हुआ। वो आशिका की तरफ पलटा और मुस्कुराकर बोला, तुम्हें ऑफिस जाना है ना, तो तुम ऑफिस जाओ, मैं घर का काम कर लूंगा। जब तुम इवनिंग में वापस आओगी तब मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाकर तैयार रखूंगा। लेकिन तुम्हारा फ्रेंड तो नाराज होकर चला गया। नक्श एक बार किसी से गुस्सा हो जाता है तो जल्दी से उससे वापस बात नहीं करता है, आशिका ने परेशान चेहरे के साथ कहा। कोई बात नहीं, तुम हो ना मेरी वन एंड ओनली फ्रेंड। वैसे भी मुझे इस घर में तुम्हारे अलावा और कोई पसंद नहीं है, और ना ही मुझे किसी और के साथ कोई और रिलेशन रखना है। अगर मैं इस घर में आता हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए, और आगे भी ऐसे ही आते रहूँगा तुम्हारे लिए, अभिमान मुस्कुरा कर बोला। उसे किसी की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रॉमिस, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना? जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी तुम ऐसे ही मेरे साथ रहना, और जब मैं ऑफिस से आऊँ तो मेरे लिए खाना बनाना, आशिका ने अपनी मासूम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिस पर अभिमान ने उसके हाथ पर हाथ रखकर प्रॉमिस कर दिया था। आशिका की याद आते ही अभिमान की आंखें नम हो गई थीं। उसने आह भरते हुए कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाया, और ना ही वो वादा कि जब तुम ऑफिस से आओगी तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर तैयार रखूंगा। इतने साल हो जाने के बाद भी अभिमान को यही लगता कि आशिका 5 साल की है और उसके घर के गार्डन में अभी भी उसके साथ खेलती है, उसे बुलाती है। अभिमान ने एक नज़र अपनी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी की तरफ देखा, जो थोड़ी देर पहले आशी ने पहनाई थी। अभिमान ने अंगूठी निकाली और बगीचे में फेंकते हुए कहा, इस घर में मैंने पहले भी तुम्हारे अलावा किसी और से रिश्ता नहीं रखा था, और ना ही मुझे अब रखना है। इसके बाद अभिमान वहां से चला गया था, तो वहीं दूसरी तरफ नक्श डॉक्टर से बात करके बाहर निकला था। इसी के साथ पृथ्वी अलर्ट हो गया। उसने वार्ड बॉय के कपड़े पहने थे, चेहरे पर मास्क, और उन कपड़ों के साथ हॉस्पिटल में घूमना आसान था। डॉक्टर से बात करने के बाद नक्श ने इधर उधर देखा और फिर लिफ्ट से एक कमरे के अंदर पहुंचा। उसके पीछे पीछे पृथ्वी आ रहा था, और नक्श जिससे मिला था उसे देखकर पृथ्वी के होश उड़ गए थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि नक्श इसका सहारा लेगा। कोई आइडिया है कि नक्श किससे मिलने के लिए आया है? चलिए समीक्षा में बता दीजिए, बाकी कल तो पता चल ही जाएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं, और समीक्षा करके जाना है।